एकत्रा ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या ये शेयर बाजार, ये स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए?
हाँ, मतलब हम जैसे आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए, क्या वो भी इसमें कामयाब हो सकते हैं?
बिल्कुल। और आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे एक ऐसी किताब के जरिए जिसने सच में लाखों आम निवेशकों को रास्ता दिखाया है, उन्हें हिम्मत दी है।
हाँ, हम बात कर रहे हैं पीटर लिंच की बहुत ही मशहूर किताब वन अपन वॉल स्ट्रीट की। ये तो क्लासिक मानी जाती है।
सही कहा, क्लासिक है। और ये सिर्फ निवेश के नुस्खे नहीं बताती, बल्कि ये नजरिया बदल देती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारी अपनी दुनिया, हमारे आसपास की चीजें, मॉल, दुकानें, वो सब निवेश के बेहतरीन आइडिया से भरी हो सकती हैं।
बिल्कुल, ये आम निवेशक को एक तरह की सुपर पावर देती है ना?
हाँ हाँ कह सकते हैं।
मूल विचार है वो यही है कि जो वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी हैं ना, उनके मुकाबले आम आदमी के पास कुछ खास फायदे हैं,
और इन फायदों का इस्तेमाल करके वो बाजार में उनसे बेहतर भी कर सकता है।
सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम एक्सपर्ट से बेहतर कैसे कर सकते हैं, पर लिंच इसके पीछे ठोस तर्क देते हैं।
कि हैं कौन, मतलब कोई प्रोफेसर थे या कोई अर्थशास्त्री?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पीटर लिंच पूरी तरह से प्रैक्टिशनर थे, मतलब जमीन से जुड़े हुए इंसान। उन्हें इतिहास के सबसे सफल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में गिना जाता है।
हाँ, मैंने सुना है वो फिडेलिटी मैगेलन फंड वाले ना,
1977 से 1990 तक, 13 years।
एग्जैक्टली। और उनका जो रिकॉर्ड है वो तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। कहते हैं कि फंड जब उन्होंने संभाला तो वो कोई 18-20 मिलियन डॉलर का था,
और जब छोड़ा तो
14 बिलियन डॉलर्स। मतलब कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ, और सिर्फ साइज ही नहीं, उन 13 सालों में उनका औसत सालाना रिटर्न पता है कितना था? करीब 29.2%।
29% हर साल, वो भी लगातार 13 साल।
हाँ, उस समय का जो S&P 500 इंडेक्स था, यानी अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों का औसत प्रदर्शन, उससे 2 गुने से भी ज्यादा। ये कोई मजाक नहीं है,
कमाल है। तो क्या था उनका सीक्रेट, कोई जादुई फॉर्मूला था क्या?
शायद उनका राज उनकी सादगी में ही था। वो वॉल स्ट्रीट के इतने बड़े नाम होकर भी सोचते आम आदमी की तरह थे, मेन स्ट्रीट की तरह। उनका सबसे फेमस फलसफा है इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो,
मतलब उसमें निवेश करें जिसे आप जानते हैं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ये।
हाँ, पर उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, जब सब लोग जटिल फाइनेंशियल मॉडल्स और पता नहीं क्या क्या भविष्यवाणियों में उलझे थे। तब लिंच कह रहे थे कि अरे भाई, अपने आसपास देखो।
अच्छा, तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे नंबरों से ज्यादा असल दुनिया पे फोकस करते थे
कुछ हद तक। हाँ, उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि उनको निवेश में इंटरेस्ट तब आया जब वो टीनेजर थे और गोल्फ कोर्स पर कैडी का काम करते थे। वहां अमीर लोगों को शेयरों पर बातें करते सुनते थे।
अच्छा,
फिर पढ़ाई?
हाँ, बाद में बॉस्टन कॉलेज गए, फिर वॉटन जैसे टॉप बिजनेस स्कूल से MBA भी किया। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि डिग्री उतनी जरूरी नहीं जितना कि खुला दिमाग, ध्यान से देखना, धैर्य और
कॉमन सेंस। चलिए, आप किताब पर आते हैं, वन अपन वॉल स्ट्रीट। इसका खास मकसद क्या है, ये किसके लिए लिखी गई है?
देखो, ये किताब खास तौर पर आम निवेशकों के लिए है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जिन्हें शायद फाइनेंस की गहरी समझ ना हो, पर शेयर बाजार में हाथ हजमाना चाहते हैं। लिंच का मकसद है इस बाजार के डर को कम करना, इसे सरल बनाना।
हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल ही टिक सकते हैं।
बिल्कुल, लिंच इसी डर को खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं घबराओ मत, बल्कि तुम्हारे पास एक आम निवेशक के तौर पर कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो बड़े फंड मैनेजर्स के पास भी नहीं है। और किताब यही सिखाती है कि इन एडवांटेजेस को पहचानो और इस्तेमाल करो।
तो इसमें सिर्फ स्टॉक कैसे चुने यही बताया है या और भी कुछ है?
नहीं नहीं उससे कई ज्यादा है। स्टॉक चुनने के तरीके तो हैं ही, पर साथ में ये भी है कि कंपनी का एनालिसिस कैसे करें, वो भी बहुत आसान तरीकों से। फिर अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, मतलब कितने स्टॉक रखें, किस तरह के रखें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, निवेश का मनोविज्ञान।
अच्छा, साइकोलॉजी वाला एंगल।
हाँ, कि बाजार जब ऊपर नीचे होता है तो अपनी भावनाओं को, अपने डर और लालच को कैसे कंट्रोल में रखें, ये बहुत जरूरी है।
मैंने सुना है लिंच मार्केट टाइमिंग पर ज्यादा यकीन नहीं करते थे, मतलब कब खरीदें कब बेचें इस चक्कर में नहीं पड़ते थे।
बिल्कुल सही, वो इसे टाइम वेस्ट मानते थे। उनका पूरा फोकस अलग अलग कंपनियों पर था। उनका मानना था कि अगर आप अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हो और उसे सही कीमत पर खरीदते हो तो लंबे समय में पैसा बनेगा ही, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे।
अच्छा, तो इसे ही शायद बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी को देखने के बजाय एक एक कंपनी की अपनी ताकत देखो।
हाँ बिल्कुल, एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनाने जैसा, पूरी दीवार का अंदाजा लगाने जैसा नहीं। किताब का जो पहला हिस्सा है निवेश की तैयारी, उसमें लिंच कुछ पुरानी धारणाओं को तोड़ते हैं, जैसे ये सोचना कि प्रोफेशनल मैनेजर्स हमेशा हमसे अच्छा ही करेंगे।
अच्छा, पर उनके पास तो पूरी टीम होती है, रिसर्च होती है, हमसे ज्यादा जानकारी होती है, वो क्यों अच्छा नहीं करेंगे?
लिंच समझाते हैं कि उनके ऊपर कई तरह के बंधन होते हैं, जैसे फंड का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो छोटी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में चाहकर भी ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, फिर नियम कानून होते हैं, और एक बहुत बड़ी चीज है झुंड मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी।
हर्ड मेंटालिटी मतलब भीड़ चाल।
हाँ, सब वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो अकेले ना फंसे। इससे क्या होता है कि वो अक्सर औसत या एवरेज रिटर्न्स ही दे पाते हैं।
और यहीं पर आम निवेशक का फायदा है।
एग्जैक्टली, आप तेजी से फैसला ले सकते हैं, आप उन छोटी कंपनियों पर दांव लगा सकते हैं जिन पर बड़े फंड्स की नजर नहीं है, और सबसे बड़ा फायदा आपका अपना निजी अनुभव। अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस वाकई बहुत अच्छी लग रही है तो ये एक सिग्नल हो सकता है।
लिंच इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि मार्केट कब गिरेगा कब उठेगा इसका अंदाजा लगाना बेकार है।
ये मुझे बहुत काम की बात लगती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इसी चिंता में रहते हैं।
हाँ, वो कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना कि आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और क्या आप मार्केट गिरने पर घबराकर सब बेच तो नहीं देंगे। शेयर मार्केट में सिर्फ वही पैसा लगाओ जिसे खोने का डर ना हो या जिसे खोना आप झेल सको। और उनका वो मशहूर सिद्धांत इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, इसे असल जिंदगी में कैसे समझें, क्या मतलब है इसका?
इसका सीधा मतलब है अपनी आंखें और कान खुले रखो, अपने आसपास देखो। लिंच कहते हैं मॉल में घूमो, देखो कौन सी दुकानों पर भीड़ लगी है, आपके बच्चे किस खिलौने के पीछे पड़े हैं, आपके दोस्त किसने रेस्टोरेंट की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, आप ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जो बहुत काम का है।
अच्छा, तो ये सब निवेश के आइडिया बन सकते हैं।
हाँ, ये वो जानकारी है जो शायद वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट तक पहुंचने में टाइम लगे, पर आपके पास वो पहले से है। ये शुरुआती बिंदु हो सकते हैं रिसर्च के लिए।
किताब का दूसरा भाग है विजेता चुनना। यहाँ से असली स्टॉक पिकिंग की बातें शुरू होती हैं, और यहीं पर वो मजेदार शब्द आता है टेन बैगर।
हाँ, टेन बैगर मतलब ऐसा स्टॉक जो 10 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ जाए। लिंच कहते हैं कि ऐसे स्टॉक ढूंढना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं, और ये अक्सर छोटी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में मिलते हैं जिन पर ज्यादा लोगों की नजर नहीं होती।
हर निवेशक का सपना होता है ये, है ना, पर शायद ढूंढना उतना आसान नहीं।
बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है लिंच का वो तरीका जिससे वो स्टॉक्स को समझते हैं। उन्होंने स्टॉक्स को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। ये कॉन्सेप्ट मुझे तो बहुत ही प्रैक्टिकल लगा, क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं?
जरूर, ये लिंच के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। उनका मानना था कि हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता, हर कंपनी का नेचर अलग होता है। तो ये 6 कैटेगरीज हैं।
पहली है धीमी गति से बढ़ने वाले, स्लो ग्रोअर्स। ये बड़ी पुरानी मैच्योर कंपनियां हैं, जैसे बिजली या टेलीफोन कंपनियां। ये ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती, शायद साल में 2-4%, लेकिन डिविडेंड अच्छा देती हैं, सेफ्टी चाहने वालों के लिए।
अच्छा,
दूसरी स्थिर स्टाइल वॉट्स। ये भी बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले। ये इकोनॉमी से थोड़ा तेज बढ़ती हैं, शायद 10-12% सालाना, और ये काफी सेफ मानी जाती हैं, मुश्किल वक्त में पोर्टफोलियो को सहारा देती हैं।
और तीसरी, ये शायद इंटरेस्टिंग होगी।
हाँ, तीसरी है तेजी से बढ़ने वाले, फास्ट ग्रोअर्स। ये अक्सर छोटी नई अग्रेसिव कंपनियां होती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं, साल का 20-25% या उससे भी ज्यादा। लिंच कहते हैं कि 10 बैगर यही मिलते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है, चौथी कैटेगरी
चक्रीय, साइक्लिकल्स। इन कंपनियों की किस्मत इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से सीधी जुड़ी होती है, जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट, एयरलाइंस। जब इकोनॉमी बूम पर होती है तो ये रॉकेट बन जाती हैं, मंदी आती है तो सबसे पहले यही पिटती हैं। इनमें टाइमिंग बहुत जरूरी है।
ओह, ये खतरनाक हो सकती हैं अगर गलत टाइम पे खरीदा तो। पांचवी
है बदलाव वाले, टर्न अराउंड्स। ये वो कंपनियां हैं जो किसी बड़ी मुश्किल में थीं, शायद दिवालिया होने वाली थीं या भारी घाटे में थीं, लेकिन अब लग रहा है कि वो वापसी कर सकती हैं, सुधर सकती हैं। इनमें पैसा लगाना बहुत रिस्की है, पर अगर कंपनी चल निकली तो रिटर्न जबरदस्त हो सकता है।
हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला। और आखिरी छड़ी,
संपत्ति आधारित एसेट प्लेज। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनकी असली कीमत उनके बिजनेस से ज्यादा उनकी छिपी हुई संपत्ति में है। ये संपत्ति जमीन हो सकती है, कोई ब्रांड हो सकता है, या बहुत सारा कैश हो सकता है जिसे मार्केट नजरअंदाज कर रहा है।
वाह, ये क्लासिफिकेशन तो सच में बहुत काम का है। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि हम किस तरह की कंपनी देख रहे हैं और उससे क्या उम्मीद रखें। मतलब एक स्लो ग्रोअर से 10 बैगर की उम्मीद करना बेकार है।
बिल्कुल। फिर लिंच बताते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉक कैसा हो सकता है। अक्सर उसका नाम या काम बड़ा बोरिंग सा होता है, जैसे कचरा मैनेजमेंट कंपनी। बिजनेस मॉडल इतना सिंपल कि कोई भी समझ ले, और उसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भीड़ नहीं होती।
और किन चीजों से बचना चाहिए?
वो कहते हैं उन स्टॉक से बचो जो बहुत ज्यादा हॉट हो, जिनकी बहुत चर्चा हो रही हो, और ऐसी कंपनियों से भी जो बिना सोचे समझे नए नए बिजनेस में कूद रही हों, जिसे वो मजाक में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं।
डाइवर्सिफिकेशन, जब डाइवर्सिफिकेशन से नुकसान हो, ये शब्द बढ़िया है। अच्छा, और फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके लिए तो सीए होना पड़ेगा ना?
नहीं, लिंच इसे भी बहुत सिंपल रखते हैं। वो कहते हैं कुछ बेसिक चीजें देखो, जैसे पीई रेशियो, मतलब कंपनी के शेयर का भाव उसकी कमाई के मुकाबले कितना है, क्या ये उसकी ग्रोथ रेट के हिसाब से ठीक है, कंपनी पर कर्ज कितना है, उसकी बैलेंस शीट देखो, मतलब संपत्ति और देनदारियां, कर्ज कम होना चाहिए, और क्या कंपनी सच में कैश कमा रही है।
ये सब तो ठीक है, और वो 2 मिनट ड्रिल क्या चीज है?
ये एक बड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट है। लिंच कहते हैं क्या आप किसी को सिर्फ 2 मिनट में ये समझा सकते हो कि ये कंपनी करती क्या है और आप इसमें पैसा क्यों लगा रहे हो। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की कहानी को इतने सरल शब्दों में नहीं बता सकते तो शायद आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है।
अच्छा, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। और जानकारी कहाँ से मिलेगी? सिर्फ एनुअल रिपोर्ट से?
एनुअल रिपोर्ट तो पढ़नी ही है, लेकिन वो काफी नहीं। लिंच जोर देते हैं जमीनी हकीकत पता करने पर, जिसे वो कहते हैं स्कटलबट।
स्कटलबट? ये क्या होता है?
मतलब सिर्फ रिपोर्ट मत पढ़ो, बाहर निकलो, दुकानों पर जाओ, कस्टमर से बात करो, कर्मचारियों से पूछो, देखो प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है, कंपनी के बारे में अंदर की खबर निकालो। लेकिन हाँ, इस कहानी को हमेशा कंपनी के नंबरों से, यानी फाइनेंशियल डेटा से कंफर्म करना चाहिए। कहानी और नंबर दोनों साथ चलने चाहिए।
ठीक है, मान लिया कंपनी चुन ली, अब इसे लंबे समय तक रखना है। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए और ये बेचने खरीदने का क्या हिसाब किताब है?
ये किताब के तीसरे हिस्से दीर्घकालिक दृष्टिकोण में आता है। हाँ, पोर्टफोलियो पर लिंच का सुझाव है कि एक आम निवेशक के लिए 10 से 40 स्टॉक ठीक रहते हैं। इतने हों कि रिस्क बंटा रहे, पर इतने ज्यादा भी ना हों कि आप उन्हें ट्रैक ही ना कर पाएं। और पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक ज्यादा होंगे, फास्ट ग्रोअर या स्टालवर्ड्स या साइक्लिकल, ये आपकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करेगा।
और वो सबसे मुश्किल सवाल, कब खरीदें और कब बेचें। लोग अक्सर कहते हैं अरे प्रॉफिट दिख रहा है बुक कर लो, या लॉस हो रहा है जल्दी से निकलो। लिंच क्या कहते हैं इस पर?
देखो, खरीदने के लिए लिंच कहते हैं कि जब कोई अच्छी कंपनी आपको वाजिब दाम पर मिले तब खरीदो, बेचने का फैसला ज्यादा ध्यान से लेना चाहिए। वो कहते हैं स्टॉक सिर्फ इसलिए मत बेचो कि वो बढ़ गया है या गिर गया है, बल्कि तब बेचो।
कब?
पहला, जब कंपनी के फंडामेंटल्स में ही कोई गड़बड़ी आ जाए, मतलब उसका बिजनेस ही खराब होने लगे। दूसरा, जब स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, उसकी कीमत उसकी असली वैल्यू से बहुत आगे भाग जाए। या तीसरा, जब आपको कोई उससे भी बेहतर निवेश का मौका मिल जाए।
मतलब मनमाने कारणों से नहीं बेचना है, सिर्फ डर या लालच में आकर नहीं।
बिल्कुल, और यहीं पर निवेशक की साइकोलॉजी, उसकी भावनाएं आ जाती हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
ये शायद किताब का सबसे अहम हिस्सा है। लिंच बार बार दोहराते हैं कि शेयर बाजार में दिमाग से ज्यादा पेट यानी जिगरा चाहिए। मार्केट का गिरना नॉर्मल है, यह होता है और होता रहेगा। समझदार निवेशक इसे घबराने का नहीं, बल्कि अच्छी कंपनियों को डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मानते हैं।
सही बात है।
डर में आकर अपनी अच्छी कंपनियों को बेच देना, ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। यहीं पर उनका वो फेमस कोट आता है, शेयर बाजार में सबसे महत्वपूर्ण अंग पेट है, दिमाग नहीं। इमोशनल डिसिप्लिन यानी भावनाओं पर काबू रखना ही सफलता की कुंजी है।
तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब की जो मुख्य संदेश या थीम्स हैं वो क्या निकल कर आते हैं? पहला तो शायद वही जो आपने शुरू में कहा, आम निवेशक का फायदा।
हाँ बिल्कुल, थीम वन आम निवेशक का लाभ, द एमेच्योर एडवांटेज। आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी और लोकल नॉलेज है जो बड़े फंड मैनेजरों के पास नहीं। कोई खास कॉफी शॉप पसंद आई, ये रिसर्च का पहला कदम हो सकता है।
थीम टू, उसमें निवेश करें जिसे आप जानते हैं, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट या सर्विस आप खुद इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं, उनमें निवेश करना ज्यादा सेफ और आसान है। जैसे लिंच ने हिंस के लेग्स पैंटीहोज की सफलता देखकर उसमें निवेश किया था।
थीम थ्री, सरल व्यापार मॉडल जटिलता से बेहतर है। ऐसी कंपनी चुनो जिसका बिजनेस मॉडल आपको आसानी से समझ में आए। अगर ये समझ नहीं आ रहा कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो शायद दूर रहना ही ठीक है।
थीम फोर, धैर्य और दीर्घकालिक सोच। शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं है, रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। अच्छे निवेश को बढ़ने में टाइम लगता है, कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे ही असर दिखाता है।
थीम पांच, शोध और जांच अनिवार्य है, रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस आर नॉन निगोशियबल। सिर्फ सुनकर या देखकर निवेश ना करें, कहानी अच्छी लगे तो उसके नंबर भी चेक करो, होमवर्क जरूरी है। बिना रिसर्च के निवेश करना जुआ खेलने जैसा है।
टीम छह, बाजार का समय तय करना व्यर्थ है, मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे इसकी चिंता छोड़ो, अच्छी कंपनियों पर फोकस करो।
और सबसे जरूरी थीम सात, भावनात्मक अनुशासन सफलता निर्धारित करता है, इमोशनल डिसिप्लिन डिटरमिन सक्सेस। बाजार गिरे तो डरो मत, चढ़े तो ज्यादा लालची मत बनो, शांत रहो, अपना पेट मजबूत रखो।
इस किताब में ना कुछ ऐसी लाइनें हैं जो सच में मंत्र जैसी बन गई है इन्वेस्टर्स के लिए।
हाँ है तो,
जैसे ये वाली, जाने कि आपके पास क्या है और जाने कि आपके पास क्यों है।
जाने कि आपके पास क्या है और जाने कि आपके पास क्यों है,
मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कौन सा शेयर है, ये भी पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है और आपने उसमें पैसा क्यों लगाया है, आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है।
और ये, वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पत्थर पलटता है वही गेम जीतता है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा रिसर्च करोगे, उतने ही अच्छे मौके मिलेंगे।
ये तो बिल्कुल पॉइंट पर है। बिना शोध के निवेश करना ताश के पत्तों को देखे बिना पोकर खेलने जैसा है। कितना सच है, बिना जानकारी के पैसा लगाना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है ना।
हाँ जुआ ही है वो तो। एक और बेसिक बात, हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है, पता करें कि वो क्या कर रही है।
ये हमें याद दिलाता है कि शेयर सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले टिकर सिंबल नहीं है, उनके पीछे एक असली बिजनेस है, लोग हैं, प्रोडक्ट्स हैं। और फिर वही पेट वाली बात, शेयर बाजार में सबसे महत्वपूर्ण अंग पेट है, दिमाग नहीं। मतलब इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है इमोशनल कंट्रोल, टेम्परमेंट।
तो ये सब ज्ञान की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर इन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे अप्लाई करें, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं?
सबसे आसान तो शायद यही है कि अपने आसपास की दुनिया पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। जब आप शॉपिंग पर जाएं या कहीं खाना खाएं या कोई नई ऐप इस्तेमाल करें, तो एक पल रुककर सोचें, क्या ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, क्या इसका स्टॉक खरीदा जा सकता है। यह आपकी एक तरह की इनिशियल रिसर्च लिस्ट बन सकती है।
हाँ, जैसे अगर आप देखते हैं कि किसी खास ब्रांड के जूते आजकल सब पहन रहे हैं, तो लिंच के हिसाब से आपका पहला काम ये पता करना है कि ये कंपनी पब्लिक है या नहीं, और फिर उसके फाइनेंशियल्स देखना।
दूसरा, वो जो 6 स्टॉक कैटेगरीज थी, उनका इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो को समझने और बैलेंस करने में करें। क्या आपके पास ज्यादातर हाई रिस्क वाले फास्ट ग्रोअर्स हैं या सुरक्षित स्लो ग्रोअर्स, क्या ये आपकी रिस्क लेने की क्षमता से मैच करता है।
तीसरा, वो सिंपल फाइनेंशियल चेक्स करना सीखें, पीई रेशियो कैसा है ग्रोथ के मुकाबले, कर्ज कितना है कंपनी पर, और वो 2-मिनट ड्रिल, क्या आप किसी को 2 मिनट में समझा सकते हैं कि आपने कोई स्टॉक क्यों खरीदा है, इसकी प्रैक्टिस करें।
और चौथा और शायद सबसे मुश्किल भी, वो है इमोशनल डिसिप्लिन पर काम करना। जब मार्केट गिरे तो पैनिक में ना आए, न्यूज और सोशल मीडिया के शोर से थोड़ा बचें, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें, बल्कि एक वॉचलिस्ट तैयार रखें उन अच्छी कंपनियों की जिन्हें आप गिरावट में खरीदना चाहेंगे।
हाँ, इससे डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट महसूस होगा कि अरे वाह, मौका मिल रहा है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि ये किताब आम निवेशक को वाकई बहुत एम्पावर करती है। ये कहती है कि आपका अपना कॉमन सेंस, आपका अपना अनुभव बहुत कीमती है, बस उसे थोड़ी सी रिसर्च और मेहनत से बैकअप करने की जरूरत है। ये कहानी और नंबर को मिलाने वाला जो आइडिया है ना, वो मुझे बहुत पावरफुल लगा।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कैसे लिंच ने निवेश जैसी थोड़ी बहराने वाली चीज को इतना सिंपल और प्रैक्टिकल बना दिया है। ये सोचना कि मॉल में घूमना या कॉफी पीना भी रिसर्च का हिस्सा हो सकता है, ये अपने आप में निवेश को कम डरावना बना देता है। और हाँ, वो पेट वाली बात, इमोशनल कंट्रोल कितना ज्यादा जरूरी है, ये जितनी बार बोलो कम है।
सही कहा।
और मुझे लगता है शायद आज के इस डिजिटल जमाने में, जहां हर सेकंड इतनी जानकारी, इतना शोर है, ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि क्या इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ने आम निवेशक के लिए लिंच के सिद्धांतों पर चलना आसान बनाया है या मुश्किल।
ये सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।